नमस्कार श्रोताओ, छिंदवाड़ा वैलन से आपका दोस्त योगेश। आज पूरा देश 30 मार्च भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सच्चे भारत माता के वीर सपुत्र जिन्होंने अपने देशभक्ति और देश प्रेम के लिए प्राणों का मूल न समझते हुए अपने मातृभूमि के लिए प्राणों को न्यौछावर किया। इन तीन स्वतंत्रता के महानायक हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर वीर सपूतों की शहादत दिवस आज मनाया जाता है। आज पूरा हिंदुस्तान आज 92वीं शहादत दिवस मना रहा है। उन्होंने ही लाहौर उच्च न्यायालय में बलपूर्वक कहा था कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर पैनी होती है। आज हमारे साथ एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर जुड़े। गायकवाड़ सर, मोबाइल वाणी पर स्वागत सर आपका।
जी जी, नमस्कार सर। नमस्कार, और सर्वप्रथम आप सभी को मेरे भारतवर्ष के सभी नौयुवकों और मेरी ओर से भगत सिंह जी, राजगुरु जी, इनके शहादत दिवस के उपलक्ष्य में मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। जी
जी सर। सर, शहादत दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
शहादत दिवस पे मैं खास करके युवाओं को, भारत की युवाओं को, क्योंकि भारत जो है 65 करोड़ युवाओं का देश है साहब। चीन खुद हमसे इसलिए डरता है क्योंकि हमारे युवाओं की शक्ति है, लेकिन आज का जो युवा है, हालांकि हर समय परिस्थिति के अनुरूप परिस्थितियां बनती है, युवाओं को दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन जिस 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने देश के लिए अपनी शहादत न्यौछावर कर दी थी, उसी देश का युवा 23 साल में मतलब गलत दिशा में भटक रहा है। वो 23 साल में अपने लिए एक लव पार्टनर ढूंढता है, उसको देश अपने राष्ट्र की चिंता नहीं है, वो लड़कियों के मसले में चला जाता है, गलत दिशा में जाता है। तो ये सीखने वाली बात है कि वो एक 23 साल का लड़का जिसने अपने देश के आजादी के लिए लड़ाई के लिए अपने आप को फांसी पे लटकाया था, लटका, उसी देश का युवा 23 साल में लड़की को सेटिंग करने में लगा रहता है साहब। ये बहुत बड़ा दोष निर्मित हो रहा हमारी युवा पीढ़ी में। हालांकि समय के साथ सब परिवर्तित होता है, लेकिन उसकी दिशा कहीं ना कहीं भटके। तो मैं युवाओं को खास करके, क्योंकि मेरा शिक्षा से जुड़ाव है, मैं सभी लड़कियों लड़कों से ये कहता हूँ कि वो अपने लक्ष्य को सामने रखे। भले ही लक्ष्य आपका जो भी हो, लेकिन आप व्यक्तिगत स्तर पे स्वयं को अच्छा रखते हैं तो राष्ट्र के निर्माण में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपका योगदान होता है। जी
जी सर। सर, क्या परिस्थितियां होगी कि देश को जब अंग्रेजों में गुलाम था, तब ऐसी कौन सी घटनाएं होगी, अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण हो रहा था, तब वे समाज में देश में क्या नई ऊर्जा के साथ नए परिवर्तन देख रहे थे भगत सिंह जी?
देखिये, मतलब एक्चुअली क्रांति की शुरुआत तो मंगल पांडे जी ने उस समय कर दी थी जब भारतीयों के दमन और शोषण, उनके नीतिगत व्यवस्था के खिलाफ जो निर्णय भारत सरकार ले रही थी उस समय की, तो उसके खिलाफ सबसे पहले मंगल पांडे जी आए थे। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये जो लोग थे, इन्होंने अपने भारत माता को जब इस अवस्था में देखा, यहाँ के लोगों की परिस्थितियों को देखा, तो उनको ऐसा लगा कि हमारे जीवन का बलिदान इस राष्ट्र के निर्माण में, इस राष्ट्र को गुलामी से मुक्त करने में होना चाहिए। ये उनके प्रेरणा का स्रोत रहा, क्योंकि राष्ट्रवाद का भाव उनकी उस तत्कालीन परिस्थितियों को देखकर उनके अंदर निर्मित हुआ था। इसलिए उन्होंने एक क्रांतिकारी के रूप में, क्योंकि उन्होंने जब असेंबली में बम फेंका था, तो वो जो परिस्थितियां थी वो कहीं ना कहीं व्यवस्था के ऊपर एक कुठाराघात करने वाली थी। वो देश को आजाद करना चाहते थे, भारत के लोगों को मुक्त करना चाहते थे। जी
जी सर। सर, भगत सिंह हो, सुखदेव हो या राजगुरु हो, इनका जो समाजवाद था वो किस तरीके का था, और उस दौर में वो किस तरीके का समाज में नई ऊर्जा, नई चेतना जगाना चाहते थे?
देखिए, उनका समाजवाद मतलब अभी जो हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो कहीं ना कहीं उस पृष्ठभूमि में है, क्योंकि वो व्यवस्था पे सबके नियंत्रण की बात कहती थी। गांधी जी भी इस देश को आजाद कराना चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस भी इस देश को आजाद कराना चाहते थे, और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये भी चाहते थे, लेकिन लक्ष्य सबका देश को आजाद करना था। लेकिन उस आजाद करने की जो प्रोसेस है वो सबके अलग थी। भगत सिंह जी चाहते थे कि सब मतलब जो व्यवस्था है उस पे सबका अधिकार हो। जैसे अभी आदिवासी समाज देखा होगा, मतलब जंगल जमीन पे अधिकार की बात कहते हैं, जल जंगल जमीन पे अधिकार की जो बात कहते हैं, वही वही उनकी व्यवस्था में दिखाई देता है कि हमारी जो व्यवस्था, हमारी जो प्रकृति है उस पे हम सबका अधिकार है, ये वाली बात है। आज देखिए भारत में जिस तरह से पूंजीवाद निर्मित हो रहा है, मतलब 80% लोग जो है जनसामान्य 20% लोग व्यवस्था को संचालित कर रहे, इसलिए तो फिर से एक बार मुझे ऐसा लगता है फिर से क्रांति निर्मित होगी। अभी देखिए अभी नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे, वहां देखिए किस तरह से राजनीतिक तंत्र जो है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सामने रखता है, उसको राष्ट्र की चिंता नहीं है, वो इस तरह से लोक लुभावन नारे देते हैं। तो कभी कभी लगता है कि भगत सिंह ने अपनी जो शहादत दी, राजगुरु जी अपने फांसी पे, चंद्रशेखर आजाद जी जब फांसी पे लटके, तो उसी देश में व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीतिक तंत्र जो है, मतलब जिनका कोई सामाजिक योगदान नहीं होता, जिनका कोई सामाजिक सरोकार नहीं समाज से, वो लोग बड़े बड़े फ्लैग्स बैनर में केवल नए वर्ष की शुभकामना, होली की शुभकामना, ऐसे बैनरों पे आके अपने आप को समाज से जोड़ने की बात बताती, जबकि उनका जमीनी स्तर पे कोई योगदान नहीं। साहब मुझे ऐसा लगता है कि भगत सिंह का जो योगदान रहा है उसको ध्यान में रखते हुए सब नवयुवकों को अपने राष्ट्र निर्माण में, अपने समाज के निर्माण में देखिए। अभी हमारे यहाँ ग्राम पीपला नगर पीपला नारायण में सार्वजनिक स्थल पर शराब की भट्टी है। समाज कभी कभी ऐसा लगता है कि समाज जागृत है, लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, प्रशासन मदद नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में किस हमको सामने आना पड़ रहा है कि उस व्यवस्था में जो समाज में जो युवा पीढ़ी को भटकाव हो रहा है, पूरा असामाजिक तत्वों का भरमार रहता है साहब वहां पे, लड़कियां डरती है, तो ऐसी व्यवस्था में शासन व्यवस्था को हमारे साथ देना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था को हमारा साथ देना चाहिए। जो लड़के लोग सामने आ रहे वहां का, उस व्यवस्था का विरोध कर रहे, उनको बरगलाया जा रहा है, उनको बहकाया जा रहा है, भाई व्यवस्था में जो कुरुति है उसको दूर करना चाहिए। हम उस देश के नागरिक के साथ जहां पे भगत सिंह ने क्रांति की ज्वाला भड़काई थी, मंगल पांडे जहां पैदा हुए, तात्या टोपे जहां, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो, तो ये वाले जो नारे है ये प्रेरणा देते हैं आज की युवा पीढ़ी को। और यदि हम इस तरह से करेंगे तो व्यवस्था पे सबका सबका सहयोग, सबका विश्वास वाली जो बात है वो दिखाई देगी, यही उनका समाजवाद था।
जी सर। सर भगत सिंह जी के जो विचार थे उनके अनुसार किस तरीके से आज अपने क्षेत्र में या राष्ट्र में नई ऊर्जा प्रवाहित हो सकती है आने अभी जो उनके विचारों के माध्यम से किस तरीके से
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अम्बेडकर साहब का एक कथन में हमेशा कहता हूं कि शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो हमारी युवा पीढ़ी को शिक्षा पे अधिक बल देना चाहिए, अपने शिक्षा को अर्जन पे, केवल हम लोग जॉब के लिए शिक्षा ना करें, सीखे, क्योंकि आप जब संविधान पढ़ते, आप जब अपना इतिहास पढ़ते, आप अपने समाज को देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मेरी भूमिका क्या हो सकती है इस राष्ट्र के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा अच्छे लोग चुप है इसलिए गलत लोग शासन व्यवस्था में सूत्रधार बने हुए हैं, तो ये जो व्यवस्था है इसको बदलने के लिए जरूरी है कि हम शिक्षा को अपना हथियार बनाए, क्योंकि नेल्सन मंडेला जी कहते थे कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से पूरे दुनिया को बदला जा सकता है। और मैं कहता हूं भगत सिंह जी का जो योगदान रहा है वो अपनी परिस्थितियों में सही है, लेकिन आज हम लोग एक नई क्रांति की शुरुआत शिक्षा के माध्यम से करके समाज में एक बड़े बदलाव के लिए आगे आना चाहिए। हम धर्म के बड़े बड़े आयोजन करते, लाखों रुपया खर्च करते, लेकिन हमारे गांव में स्कूल नहीं है, हमारे गांव में भट्टियां लगी हुई है। अरे आपको यदि व्यक्तिगत स्वार्थ कमाना तो भट्टियों से अपने आप को किसी और आय का साधन जुटाओ साहब, पूरा कई परिवार के घर नष्ट हो रहे साहब भट्टी की वजह से, शराब की वजह से। सरकार शराब नीति बना के, अरे आपको कमाना ही है तो दूसरी आय का स्रोत बने। गांव में जाके देखिए कई बच्चे फीस नहीं दे सकते साहब, लड़कियों को मजदूरी करना पड़ता है, उनके परिवार का मुखिया शराब पीता है। तो समाज जो है ना शराब, 5 लाख एक्सीडेंट साहब सिर्फ शराब से, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले से, आप देखिए शराब का कितना है। और सरकार जो है, हमको तो शर्म आती सर हमारी सरकार के ऊपर कि वो कहते कि अब आप घर जाके शराब पी सकते। अरे वो देश जहां भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए उसको ये लोग सूत्रधार मानते हैं, इनकी खुद की पृष्ठभूमि नहीं है साहब, ये लोग खुद गांधी जी को सामने लाके अपने बैनरों में रख के अपना प्रचार करते, क्योंकि इनका खुद का वजूद नहीं है, इनको तो भरोसा। मुझे लगता है कि हमारा जो लोकतंत्र है फिर से एक बार एक नए राजतंत्र की ओर अग्रसर न हो जाए, क्योंकि परिवारवाद जिस तरीके से बढ़ रहा है हमारे लोकतंत्र में, हर नेता अपने बच्चे को सांसद बना रहा है, मुख्यमंत्री बना रहा है, तो फिर मतदाता क्या है, केवल वोट डालने के लिए रखा है, फिर उसकी बात नहीं सुनी जाती। जब वो कह रही, पूरी जनता जब कह रही है कि भाई उस गांव में भट्टी नहीं होना चाहिए, समाज को नुकसान हो रहा है, बच्ची असुरक्षित महसूस हो रही है, छिंदवाड़ा देखिए कितना शांत इलाका था लेकिन किस तरह से निर्माण हो रहा है यहाँ पे, क्या हम लोग सही में भगत सिंह को याद कर रहे हैं? क्या हम सही में सुभाष चंद्र बोस जी को याद कर रहे हैं? हम किस देश का निर्माण कर रहे हैं? कैसे लोकतंत्र का निर्माण कर रहे हैं? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारी व्यवस्था पे निर्मित हो रहा है सब। जी
सर, अपन अभी हाल ही में इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं और इसी के माध्यम से आज शहादत दिवस के साथ साथ युवाओं के लिए भगत सिंह का समाजवाद और आने वाला वर्तमान परिवेश को किस तरीके से देख रहे सर?
देखिये, G20 की बैठक साहब एक ऐसे व्यवस्था में हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है उस देश को, क्योंकि कोरोना के बाद भारत का जो विश्व व्यवस्था में एक समग्र नेतृत्व उभर कर आया है और G20 के माध्यम से हमको जो लीडरशिप मिली है, इससे हम अपने राष्ट्र के जो उद्देश्य है, विश्व के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है, उसको रखने में हम मदद करने में बहुत बड़ी भूमिका देखी। आज देखिए, संपूर्ण विश्व व्यवस्था में भारत को एक अच्छा नेतृत्व प्राप्त हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भारत जो है ना, फिर से एक बार विश्व गुरु बनने जा रहा है। आज देखिए, नरेंद्र मोदी जी इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, इतना सक्षम नेतृत्व शायद पूरे इतिहास में जो प्रधानमंत्री तो काल में जिन लोगों का भी देखा मैंने, तो उनमें सबसे सक्षम नेतृत्व। आप देखिए साहब, पूरे एक व्यक्ति को नष्ट करने के लिए पूरा विपक्ष सामने आ गया, क्योंकि वो जिस तरीके से व्यवस्था में सुधार कर रहा है, और हमने इतिहास को भी पढ़ा है कि जब नया परिवर्तन करना चाहता है तो लोग उसका विरोध करते हैं। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा था, मैंने पढ़ा उसको, कि ये मोदी को निपटाना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगा। तो शायद सक्षम नेतृत्व तो बहुत जरूरी है। भगत सिंह यही तो चाहते थे कि स्वयं नेतृत्व तो करने की क्षमता हम में पैदा होनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने पूरे देश को, पूरे विश्व को आगाह कर दिया था कि भारत एक सक्षम नेतृत्व करता देश है। तो आज हमको एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता, बात दल की राजनीति की नहीं है। आज देखिए, हमारी साख इतनी बढ़ गई कि हम G20 का नेतृत्व कर रहे हैं। हम अपनी बात, पर्यावरण को हम लोग सुधारने का बात कर रहे हैं, आतंकवाद के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, संस्कृति के ऊपर बात कर रहे हैं। ये जो सुधार दिख रहा है व्यवस्था में, ये भारत के स्पष्ट दृष्टिकोण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और आज देखिए, रूस हमारे टैलेंट को मानता है, अमेरिका की स्थिति देखिए, तो वो सब हमारे टैलेंट को मान रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, मोदी जी, मैं बात पार्टी की नहीं कर रहा हूं, मैं सक्षम नेतृत्व की बात कर रहा हूं, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक सक्षम नेतृत्व की बात कर रहा हूं। आज पाकिस्तान की हालत देखिए, श्रीलंका की हालत देखिए, अमेरिका की हालत देखिए, रूस की हालत देखिए, यूक्रेन देखिए, सारे आर्थिक व्यवस्था से बिल्कुल अस्त व्यस्त होते जा रहे, लेकिन भारत एक सक्षम नेतृत्व बनके विश्व अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये बहुत बड़ी बात है साहब। तो भगत सिंह जी ने जो सपना देखा रहा होगा इस देश के साकार स्वरूप के, एक स्वतंत्र आजाद देश के, वो उस अग्रसर हो रहा, और उसके लिए सक्षम नेतृत्व की जरूरत है। और सक्षम नेतृत्व हम तब दे पाएंगे जब हम शिक्षा के महत्व को समझेंगे, क्योंकि हम मालक है, हम मतदाता मालक है। और ये हमको बात जिस दिन समझ में आ जाएगी, और ये बात तब समझ में आ जाएगी जब हम शिक्षा के माध्यम से बातें करेंगे, शिक्षा को जानेंगे, तो इस देश की व्यवस्था को बदलने में हमारा सबसे बड़ा योगदान हो सकता है। जी
सर, USSR के महान क्रांतिकारी लेनिन थे, जिनके प्रवाह से, जिनके मार्गदर्शन से, या जिनके विचारों से भगत सिंह जी बहुत अधिक प्रभावित थे, और उनके समाजवाद को देखे या उनके सिद्धांतों को पढ़कर भगत सिंह ने एक अपने देश के ऊपर एक आयाम बनाया, एक विचार बनाया। सर, लेनिन के समाजवाद और भगत सिंह की विचारधारा को किस तरीके से देखते हैं सर आप?
देखिए सर, लेनिन का जो समाजवाद था वो वहां की पृष्ठभूमि में था, क्योंकि वहां राजतंत्र था, वहां के राजतंत्र, वहां के राजा के जो अधिकार की जो व्यवस्थाएं थी उसको पलटने के खिलाफ था। तो वो समग्र व्यवस्था पे जनमानस के अधिकार की बात कहती थी। भारत जो है एक अलग पृष्ठभूमि का देश था, तो इन्होंने उस समाजवाद को तो अपनाया, लेकिन यहाँ पे जो गांधी जी जो कहते कि राम राज्य की जो बात कही थी कि यहाँ पे स्व सहायता समूह, समग्र अर्थव्यवस्था, भागीदारी अर्थव्यवस्था में सभी की, और एक योग्य प्रशासन, तो वो वाली चीज यहाँ थी। वो हमारे, उसके और हमारे में यही एक अंतर है। हम भी समाजवादी व्यवस्था को चाहते थे, लेकिन हमारे यहाँ अभी जो स्वरूप बदल रहा है धीरे धीरे, वो अब निजीकरण की तरफ जा रहे। तो उस निजीकरण की तरफ जाने का एक कारण ये हो सकता है कि संगठन के जो व्यवस्था के जो लोग अंग है, वो अपने दायित्व का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पा रहे। हमारा अधिकारी तंत्र जो है केवल अपने आप को मालिक समझने की बात पे, अभी झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि जो IAS अधिकारी है जो आईपीएस है वो खुद को मालक ना समझे, ये बहुत बड़ी टिप्पणी है साहब। तो ये इससे क्या होगा, इस यदि वो स्वयं को नौकर शाह यदि स्वयं को मालिक समझने लग गए तो जनभागीदारी नहीं बढ़ेगी, और जनता का सहयोग जब तक प्रशासन में नहीं मिल पाएगा तो हम लोग समाजवाद कैसे निर्मित कर पाएंगे। समाजवाद के लिए जरूरी है कि जनमानस का सहयोग मिले, जब जनमानस यदि असहयोगी रहेगा तो हम अच्छे प्रशासन एक गुड गवर्नेंस का निर्माण नहीं कर सकते, और गुड गवर्नेंस का निर्माण करेंगे तब व्यवस्था पे सभी की भागीदारी होगी और एक नए समाजवाद का हम लोग निर्माण कर सकते। जी
जी सर, इस शहादत दिवस पर हमारे साथ गायकवाड़ सर ने मोबाइल वाणी के साथ जुड़कर अपनी राय रखी। गायकवाड़ सर, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
छिंदवाड़ा वाले सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।